बड़ा पंडित बन रहा है। गतासु न गतासु नानुसो चंद पंडित। आज तुम पंडित होकर के जो चला गया उसके लिए शो करता है, जो चले जाने वाले उसके लिए शो कर रहा है। उठो उठो, अब ये सब वाणिया तो उसके भाषा में भाव में लेकर के और देख रहा है कि कृष्ण उसको ओह कृष्ण का कितना सुंदर रूप, अर्जुन कैसे विषण हो रहे हैं, कैसे सुंदर सुंदर हो रहे हैं, कैसे सुंदर सुंदर उपदेश। वो उपदेश की याद नहीं देख रहा, वो क्या देख रहा है, कृष्ण का रूप देख रहा है, अर्जुन को देख रहा है। और पार्टी में पंडित लोग बैठे हैं, अनुस्वार और विसार के पंडित हमारे जैसे पंडित लोग कम खम टम बैठे हुए हैं। उन्होंने देखा रे ये बेवकूफ, कभी संस्कृत क्या तब पढ़ा नहीं, स्कूल में कभी गया नहीं और ऐसे उच्चारण आता नहीं और आंख से आंसू गिर जाता तो इस ढोंगी को। महाप्रभु जी वहां पर बैठे हुए थे, देख रहे थे, तन्मय होकर के बैठे। जब उसका पढ़ना शेष हो गया, आंखों में आंसुओं की लकीरें अभी पड़ी हुई है और वो पोथी कब दबा करके अब वो जाने की तैयारी। महाप्रभु छठ पहुंच गए और उसे समीप जाकर के बैठ गए, एक जिज्ञासु साधारण जिज्ञासु की तरह हाथ जोड़कर पंडित जी एक बात हमको बतलाएंगे सच में, आप ये पढ़ रहे थे गीता तो आप रूप आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहा। तो उन्होंने कहा चुपचाप बैठ जाओ, आंसू किस लिए आंसू आ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं संस्कृत को जानता नहीं, जैसे तैसे आ जाता है, मैं उसे पढ़ लेता हूं, किंतु मैं ज्यों ही आरंभ करता हूं देखता हूं कि कृष्ण सचमुच रथ लेकर के वहां पर उपस्थित हो और कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और कृष्ण का रूप वह देखकर अब अर्जुन का वह भाव देखकर और दिव्य रथ देख करके विशेष करके कृष्ण का स्वरूप देख मैं एकदम तन्मय हो जाता हूं और बरबस आंखों से आंसू देता हूं। बस महाप्रभु जी एकदम निपट गए, बोले तुम्हारा पढ़ना ही सार्थक है। उन पंडितों का अनुसार धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र माम का पांडवाश्चैव कुमकुरुत संजय, ये शुद्ध पढ़ना किसी काम का नहीं यदि उसमें भाव नहीं है। उसी प्रकार से जो हरिनाम करते हैं 3 लाख हरिनाम 4 लाख हरिनाम करने वालों को भी हमने सुना किंतु भाव नहीं है तो वो भजन नहीं है। ये भजन के सब रहस्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी का। इन भजन के रहस्यों के साथ में भजन नहीं किया जाए, केवल ऊपरी झापरी विचारों को देकर के चला जाए। ये जिनको भजन के ये भाव नहीं वो क्या प्रचार करेगा, क्या चीज देगा। कृष्ण के अंदर में वो भाव थे इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया। जिस गुरु के हृदय में ये सब भाव ही नहीं है, जो शिष्य इसको लेना ही नहीं चाहता ऐसे भाव उनको, उन लोगों के लिए भजन का भी रहस्य नहीं है। हाँ वैष्णव के संग में कुछ दिनों के बाद में ये सब भाव खास तब भजन के रहस्य में प्रवेश करने पर उसको समझे। उस समय कहते हैं भक्त विनोद ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जो समस्त अनर्थों को छोड़ करके ही भजन करना ये नहीं है, जब समस्त अनर्थ छूट जाएंगे चित्त निर्मल हो जाएगा, कोई भी दोष त्रुटि नहीं रहेगी और सब कुछ हम जान लेंगे तब भजन करेंगे, यह गलत है। जो जैसा जिस अवस्था में जहां पर भी है, चाहे वो हजार अजामिल की तरफ में हो, दुराचारों से भरा पड़ा है, अनर्थ है, उसमें संसार के सभी जो कुछ अनाचार व्यभिचार सब कुछ है, किंतु वहीं से यदि श्रद्धा उसकी वहीं से भजन आ रहा है। जो जहां स्थाने स्थिता तनुवानी जो जहां पर जिस स्थिति में वहीं से भगवान का भजन करता है। तुम इसके योग्य नहीं हो, तुम बहुत दुराचारी है, तुम दुराचार छोड़ दो इसके बाद में भजन करो, ऐसा नहीं गुरु ऐसा नहीं कहता। गुरु क्या कहता है,
अच्छा आरंभ करो और इसको साथ साथ में छोड़ो,
छूटता नहीं तभी तुम करो,
क्योंकि मन में एकाग्र नहीं होता है, विषय में फंसा हूं।
ठीक है कोई बात नहीं है, तुम करो। तो
गुरु जी मैं पूरा नहीं कर, आपने कहा 1,00,000 परिणाम करने का, तो मैं तो कर नहीं सकता, मेरे लिए संभव नहीं।
ठीक है,
1,00,000 नहीं कर सकता है, 75,000 कर सकता है,
नहीं इतना,
कितना करेगा?
32 बार करेगा,
32 माने 50,000, ये भी मेरे लिए कितना होगा? तो आप कहेंगे तो मैं 16 बार के लिए चेष्टा करूं। अच्छा ये ऐसा ही करो, 9 से तो अच्छा है, मामा नहीं होने से काना मामा भी अच्छा है ना, मामा ही नहीं और किसी का मामा है किंतु काना है तो वो भी अच्छा है, मामा है काना है, तो वैसे ही भजन नहीं पूरा कर पाता। अच्छा तो यही साल है, किंतु भक्ति देवी एक ऐसी थी जो ऐसे दुराचारी महान पापी व्यक्ति को भी, अजामी और वाल्मीकि जैसे लोगों को भी उदार है, वहीं से आरंभ किया, राम राम करो नहीं निकल रहा है, हमको आता ही नहीं है गुरु जी,
नहीं आता। अच्छा
मारपीट किया कहीं? किया है, कहां किया है? बहुत मारपीट। अच्छा तो आदमी ये मर करके जा रहा है ना, ये जो लास्ट जा रही है क्या है, तो मरा हुआ है, तो मरा तो आ जाता है, तो ठीक है मरा मरा करो, तो ठीक है गुरु जी हमारे लिए अनुकूल है, मरा मरा तो मैं कर सकता, ठीक है मरा मरा ही करो, मरा मरा राम कर, राम 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 राम, अरे ये तो राम राम बोले, पहले तो आता ही नहीं था कि बताने लग गए, इसलिए जो जहां स्थित है स्थानीय स्थिति तनु मन आरंभ करेगा, तब ये सप्तम स्थिति में जहां हम लोग भी पाठ कर रहे हैं, तो धीरे 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 ऐसा ही देखा जाए। अजामिल चरित्र को देखो, चित्रकेतु महाराज के चरित्र को देखो, और भी जितना है सब का चरित्र भी देखो, पहले ये नहीं मालूम पड़ता कि भजन में इतना रहस्य है, रस ये नहीं मालूम पड़ता, किंतु धीरे धीरे, किंतु इसकी जड़ में कौन है? ये श्लोक कहने के पहले, ये श्लोक है शायद 40वां है, तो पहले श्लोक में उन्होंने प्रणाम किया, पहले अपने गुरु जी को प्रणाम कर रहे, चिंता मनीर जयति सोम गिरी गुरु में शिक्षा गुरुश्च भगवान श्री पुच्छ मौली जत्पाद कल्प करु पल्लव से खरेशु लीला स्वयं वर रसम लभते जयश्री। उन चीजों को भजन में रहस्य प्रवेश करने के लिए ही गुरु की जरूरत है, नहीं तो ऐसा कौन नहीं है जो मराम राम 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 कर ले। उल्टा नाम करने से वाल्मीकि जी को ये हो गया, कुछ दिनों में ही वो सर्वांतर्यामी सर्वदर्शी वो हो गए, जगत को पवित्र करने वाले बन गए, और हम लोग राम राम करते हैं और कितना करते हैं, कृष्ण कृष्ण करते हैं, हम लोग को क्यों नहीं कुछ हो रहा है, कारण क्या है? उनका गुरु कौन था? इसलिए। और साधारण लोग जो जिनके गुरु कर्मी ज्ञानी हैं, जिनको भगवान में विश्वास नहीं है, अपनी प्रतिष्ठा के लिए उनको करते हैं, उनके लिए वो लात बात भी करते रहे, वो फल रहे, इसलिए सब कुछ निर्भर करता है जिसके ऊपर। इसलिए हमारे संप्रदाय में भक्ति विनोद ठाकुर जी का बहुत, वे यथार्थ उनके वचनों को जो चलने वाले हैं वो लोग, इसलिए यहाँ पर कृष्ण कर्णामृत का श्लोक ले रहे हैं, किसका? जिन्होंने पहली वंदना की, चिंतामणि हमारी गुरुदेव जी है, कैसे हैं? चिंतामणि है, चिंतामणि उसको कहते हैं जो कुछ चिंता की जाए और वो प्रत्यक्ष रूप में मिल जाए, वो आज जो कुछ दे सके उसको कहते हैं चिंता। किंतु चिंतामणि भी बहुत प्रकार की, एक तो चिंतामणि है ऐसी जैसे कि कोई एक राजा था, जंगल में गया शिकार खेलने, रात हो गई तो शिकार खेलते 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 थक गया, भूख भी लगी, प्यास भी लगी, थक भी गया, तो जंगल में देखा जैसे अब तो भयंकर अंधकार होने लगा, और सिंह भालू भी गर्जन करने लगे अभी हमको खा जा ना सके, इसलिए वो कहीं अपना आश्रय चाहता था। घोड़ा लिया चलते चलते एक कहीं देखा जैसे घोड़ा अंधकार हो गया, बस एक पेड़ के नीचे गया। तो क्या जो हो यदि यहां पर मुझे कुछ भोजन मिल जाता, सुंदर पानी मिल जाता तो पानी पी करके खा करके। इतने में देखा पानी आ गया और भोजन भी मिल गया। थोड़ी देर के बाद एक पलंग होता है बड़े आराम से सो जाए, इतने में देखा एक पलंग आ गया खूब सजा सजा, बस उसको सो। थोड़ी देर के बाद नींद खुली, रानी तो बात अरे बात कहीं खाने जाए, इतने में बाघ लपका और उसको खा गया। इसलिए अच्छा या बुरा जो कुछ भी चिंतामणि से कहते हैं कि वहां पर कोई चिंतामणि थी या कोई कल्पतरु, यहाँ पर कल्पतरु का उल्लेख है। जतपात कल्पतरु पल्लव कृष्ण के चरण कमल, या हमारे गुरु जी जो हैं जो चिंतामणि स्वरूप हैं उनके चरण कमल कैसे हैं? कल्पतरु के समान है, जो कुछ हम इच्छा करें वही ऐसे है। और एक कल्पतरु चिंतामणि के ऐसे गुरु जी हैं जिनके चरण कमल कैसे हैं? चिंतामणि को कैसे चिंतामणि कृष्ण रूप कृष्ण का जो प्रेम है इसे बनकर के कोई अर्थ नहीं है। ऐसे देखते पड़ते हैं उनको तो देखने के बाद तुम लोग करिए हमको जैसे वही बार वही है वही। तो वो कान लगा करके सुनने लगी और देखेंगे कहां इधर उधर उन्होंने देखा आज कहीं ना कहीं जरूर छिपा हुआ होगा। अत्यंत उन्माद में भर गए, किसको कहते हैं विरह का उन्माद। उन्माद माने मद से उन मद इतना हो गया ते की सारी स्मृति भूल गई और पागल जैसे बिना सिर पैर की बात करता है और वैसे ही कार्य करता है वैसे ही बोलता है, कोई ठीक नहीं ये क्या बोल रहा है, कोई संलग्न बात नहीं कर असंलग्न बात नहीं कर। सखियां हैं किंतु कल ये कहा सखियों ने नहीं कहा कि कहीं भी बोल टुकुर बज रहा है, वो अपने आप सुन लिया और अपने आप देखने लगे। करते करते प्रबल उन्माद उपस्थित हुआ, उन्होंने उन्माद में ही आविष्ट होकर के देखा। अब कृष्ण का चित्त तो कोई दूसरी भावनाएं नहीं है, ना कोई संसार की वासना भावना कोई भी पूछे एकदम नहीं, बस कृष्ण में वो तन्मय हो गए। और ऐसे साधक लोगों का कुछ हद तक होगा, इतना नहीं होगा, कोटि कोटि का एक भाव जब होगा तो उसी भावावस्था में होगा, जब सब अनर्थ संपूर्ण रूप से सदा के लिए
उन लोगों का होगा जो लोग उनके सजातीय हैं,
सजातीय हैं उनका होगा
तदनु,
नहीं तो
केवल सजातीय,
नहीं तो मुक्त लोगों को भी नहीं होगा और लोगों की तो बात क्या है। इसलिए इनकी भावावस्था है और ठीक वैसे ही चिंता करते हैं इसलिए इनकी हुई है। अत्यंत भाव में उन्माद हो, कहां चलना चाहिए क्या बोलना चाहिए सब कुछ एकदम खुल गया। महाप्रभु जी का ऐसा ही होता था भाव और किसी का नहीं होता था, सब दामोदर इत्यादि को हो किंतु ऐसा नहीं, एकदम उन्माद ग्रस्त हो गए ऐसा। उन्होंने देखा क्या, अरे यही तो कृष्ण सामने खड़े हैं और इस रूप में देखा कि अलसाय में उनके श्रीअंग हैं,
और मालूम हुआ कि कहीं किसी से भेंट करके आ रहे हैं, मुलाकात के बाद में आ रहे हैं। उनको देखते ही अमर्ष उत्पन्न हो गया। ये अमर्ष शब्द है उज्ज्वल निर्मल। अमर्ष मैंने क्या, एक होता है मर्ष और एक होता है अमर्ष। सहिष्णुता को मर्ष कहते हैं और असहिष्णुता को एकदम असहिष्णु बन गई। कोई कुछ बात कहे ना, जब सह नहीं जाए एकदम तुरंत उत्तर दे दिया। कब होता है ऐसा, किसी काम में हम लगने पर वो काम पूरा नहीं होता, हमारी इच्छा के विपरीत हो जाता है और उस समय कोई थोड़ी सी भी बात करता है तो अब सहन सरलता नहीं रहती, साथ ही साथ में उत्तर प्रत्युत्तर करने लगता है। यह है अमर्ष, एकदम उनको अमर्ष। अमर्ष माने अब उनके गुणों में ही दोष देखना, ये अमर्ष है तो गुण किंतु हो गया उसमें दोष। कोई आदमी अत्यंत मधुर स्वर से किसी से बोलता है तो अब अमर्ष में हो गया, आप यही मधुर बोली बोलने के कारण आपका जीवन बर्बाद हो गया। कोई उपकारी है उसको कहते उपकार करते तो अपने घर को लुटा दिया, कहते हैं ये सच बोलते हैं जो यहां कहने सच बोल रहे आपका घर नष्ट हो गया सच बोलते थे। महाराज हरिश्चंद्र के समाज द्रौपदी भी उनको सुना दिए, इतनी दयालता की जरूरत नहीं है, दयालता से तो आपने सब बर्बाद कर दिया था। कि ये नाम है अमर्ष। अब यहाँ पर कृष्ण के प्रति अमर्ष और मर्ष दोनों चल रहा है। अब इसी में ले आएंगे भाव संधि, भाव साबल्य,
भाव शांति,
भाव शांति,
भावोत्पत्ति,
ये सब इसमें लिया। जब दो भाव एक समान चलते हैं तो वो भाव संधि होती है। दो राजा हैं लड़ रहे थे और लड़ने के बाद में संधि हो गई तो दोनों बराबर हो गए ना। पौरुष और सिकंदर दोनों में लड़ाई चल रहा था। सिकंदर अलेक्जेंडर से आया बहुत सेनाओं के साथ में, आक्रमण किया भारत में और उसने उसका सामना किया। अब सामना किया, दोनों में युद्ध हुआ और अंत में ये बंदी बनाए गए पौरुष। उनको बंदी बनाया तो उनको ले आया सामने। बहुत दृढ़ता से लड़ा था। सिकंदर ने कहा तुम्हारे साथ में कैसा व्यवहार करो, तो उन्होंने कहा वीर वीर के साथ में जैसा व्यवहार करता है इसमें पूछने की क्या जरूरत है। प्रसन्न होकर अच्छा ठीक है, अब दोनों में संधि हो गई, आप अपना राज्य ले जाइए, हमारा राज्य रहेगा, दोनों में आप मित्र, वो भी राजा ये भी राजा। उसी तरह से जब किसी के हृदय में दो प्रकार के भाव आ रहे हैं और दोनों भावों में संधि होने पर दोनों भाव प्रबल रहे, अब फिर मित्र होकर के दोनों शांत हो गए, तब इसको कहते हैं भाव प्राबल्य। एक को एक ने, भीम ने दुर्योधन को ऐसा हरान हराया कि फिर वो उठ न सका, टांग तोड़ दी और सब हृदय तोड़ तोड़ मोड़ करके रख दिया और फिर सदा के लिए वो। यहां पर क्या हुआ, एक भाव ने दूसरे भाव को दबा दिया। इसी तरह से श्रीमती राधिका के हृदय में तरह तरह के भाव उत्पन्न हो रहे हैं अपने आप, ये भाव उत्पत्ति है। कृष्ण नहीं है किंतु उन्मादग्रस्त दशा में कभी कृष्ण को देखती है कभी कृष्ण को, और उससे तरह तरह के जो भावों का उत्थान और पतन हो रहा है इस श्लोक में उसी को दिखलाया है। कैसे भावों की उत्पत्ति हो रही है, हे देव कहा इसमें भाव की उत्पत्ति है। देव माने दिव्यति क्रीड़ति, क्रीड़ति राशेन क्रीड़ति, राष्ट्र द्वारा क्रीड़ा कर रहे हैं और राष्ट्र इसको कहते हैं जहां पर नित्य गीत मिलन,
नित्य गीत
मिलन
इत्यादि सब प्रकार के रस जहाँ पर एकत्रित होते हैं, यहाँ पर सौंदर्य माधुर्य सब प्रकार एकत्रित सब भावों की एकत्रित अवस्था होती है, उसमें नित्य करने वाला जिसके लिए हो रहा है दोनों उसमें रस से अपायित हो जाते हैं, उसको कहते हैं राग। यहाँ पर भाव उत्पत्ति में हे देव में ये लिया है। इस शब्द की व्याख्या करने के लिए पहले उज्ज्वल मणि को स्मरण करा करके भाव साबल्य किसको कहते हैं, भाव उत्पत्ति किसको कहते हैं, भाव शांति किसको कहते हैं, भाव ये सब किसको कहते हैं, पहले ये इसको बतला रहे हैं जैसे लोग समझें कुछ, नहीं तो कुछ समझेंगे नहीं जिसका क्या। इसलिए साधारण आदमी के लिए ये नहीं है, ये महाप्रभु और उनके समान जो रह जो है सब दामोदर है रामानंद प्रभु तिरुप गोस्वामी ऐसे भाव वाले लोग उसको कुछ समझ सकते। इसलिए बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची। अब वो कृष्ण कहीं दूसरी जगह से गोपी के साथ से होकर के यहाँ पर आए हैं, इसलिए उनको देखते ही एकदम बिगड़ गए। पहले तो एकदम कृष्ण मथुरा चले गए हैं और मथुरा चले जाने पर बड़ी दुखी हो गई, विरह में तड़पने लगी, तड़पते 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 देखा अरे ये तो हमारे सामने खड़ा है यही तो जिसके लिए अभी तक रो रही थी तड़प रही थी उसको देख करके बस अमर स्वभाव है, असहिष्णुता आ गई उसके पेश को देख करके, रूप को देख करके, उसके भाव को देख करके, उसके अंगों को देख करके एकदम उस पर बिगड़ गई, भाव उत्पत्ति हुई। कृष्ण को सामने देख करके भी उस असहिष्णुता के कारण उनसे बात ही नहीं किया। आइए बैठिए, आप कहां थे, रोने लगती, ये सब कुछ हो, बस क्या किया उदासीन हो जाए, उदासीन होकर मुख फेर लिया और फिर चुपचाप कृष्ण समझा जी देखो अनर्थ हो गया, मैं आया, मैं कहीं यहीं से आ रहा हूं इसे मिलने के लिए आतुर होकर के आया और ये देख करके बात ही नहीं कर रही तो मैं ठहर करके क्या मुझे चला जाना ही अच्छा है, न कोई गया न कोई आया न कुछ हुआ, कि ये भावना किसकी हो रही है, भाव उत्पत्ति हो रही है, ये कब होगा जबकि सारे अनर्थ सदा के लिए सब पूर्ण से दूर हो जाए, बस एक ही चिंता रहेगी क्या कैसे पाऊं ब्रजेंद्र कहां जाऊं कहां पाऊं, अब दूसरी खाने पीने रहने सोने उठने बैठने किसी प्रकार की भी चिंता कोई नहीं रह जाए, कौन है संसार में और ये घर है कि हम बाहर बैठे हैं, हमारा शरीर है कि नहीं है इसकी भी कोई चिंता नहीं, तब ये स्थिति आएगी, ये साधारण स्थिति नहीं। बल्कि भक्ति रसा में सिंधु भी समाप्त हो गया और उज्ज्वल नील मणि आरंभ हो रही है, कहां से ये अभी तो हम लोग ये अनुभव ही नहीं हो रहा कि हम संसार में दुखी हैं, सूखा टट्टी खाता है ना तो उसको गंदी चीज खा रहा हूं ये समझता है, उसको मारो फिर वहीं जाता है, तो हम लोग यही दुर्दशा है, यही संसार ही अच्छा लगता, संसार में मान अपमान में बस इसी में रह जाते हैं, इसलिए कहते हैं जब कृष्ण आए तो बोला ही नहीं, बोली नहीं, न कृष्ण आए न गए, किंतु भाव से देख रही हैं, सो रही हैं, हो सकता है सो करके बस पूछ करके बैठ गए, बढ़ करके मुख फिरा दिया, ललिता इत्यादि जो है वहां पर पास बैठी हैं, उन्होंने कहा जी ऐसा क्यों कर दिया, वो तो समझ गई, अब अपने आप को उन्होंने बोला नहीं कृष्ण से, कृष्ण ने देखा जी सब जब बातें ही नहीं करती है, अरे प्रिय मैंने मेरा दोष क्या है, तो ये नहीं करेंगे तुम वहां से आए या कैसे तुम आए कहने, किंतु वो समझ गए, तो इसलिए कृष्ण ने देखा बहुत चेष्टा की बुलाने के लिए मनाने के लिए बातचीत करने के लिए उमान बहुत बातचीत नहीं किया, तब कृष्ण ने देखा जैसे तब मैं क्या करूं, कृष्ण दुखी हो गए लौटे न कृष्ण लौटे न पूछ, किंतु भावना ऐसे उल्टी हो रही है, अच्छा देखो पहले था मिलने की भावना, पहले की बड़ी उत्कंठा कब मिलेंगे हे देव। अब किंतु उत्कंठा क्या हुई, जब उन्होंने भाव से देखा जी आ गए तो उत्कंठा वो स्तमित हो गई, होकर के कृष्ण का अनादर कर दिया। इसको कहते हैं अमर। मैया से मैं मिठाई मांग रहा था, मैया मिठाइया दे दे, मैया ये दे दे, तो मैया नहीं दे रही, तो फिर वो उठ गया, तो मैया दे रही है, तब लड़का लेगा, अब वो मुंह कैसा कर दिया, लटका दिया, वो मैया हजार देने पर भी नहीं ले रहा। ठीक ऐसे ही अब जब कृष्ण चले गए तो राधा जी इधर उधर देखने लगे, जब तक थे तब नहीं देखा, देख रही हैं आंख के कोने से देख रही हैं, उनके आहट से देख रही हैं, उनके नुपुर के बजने से देख रही हैं, ये है बैठे, किंतु उनके तरफ में नहीं देखा। आज जब देखा जैसे नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो चले गए। अब ये दूसरा भाव देखो, भाव उत्पन्न हुआ वहां, अब जैसे कृष्ण को दर्शन करेंगे, कृष्ण से बातचीत करें, अब उनका वो भाव, उनका अनादर किया कृष्ण, मानो चले गए। अब उनकी उत्कंठा, प्रबल उत्कंठा और जमी, और वो रो रो करके प्रार्थना करेंगे, आप एक सेकंड के लिए हमें हे प्राणनाथ, दलित माने क्या, अब यहां दर्शन से उनकी उत्कंठा जब उठी, जब तक हमारा पुत्र हमारे पास में है तब तक कोई उत्कंठा की बात नहीं, आए यहीं पर खेल रहा हो, और जब देखा जी कहां गया उत्कंठा, कहां गया, और यदि वो नीचे उतर गया हो और यहां खोज रहे नहीं मिला तब क्या होगा, प्राण संग रह गए, कहां गया, कहीं नीचे से तो गिर गए नहीं गया, नीचे दौड़ करके गए देखा लेकिन पढ़ नहीं, कहां गया, अब कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही इनकी दशा, उससे लाख कोटि गुण इनकी दशा हुई। इसको कहते हैं औत्सुक्य, बिना उत्सुकता के, बिना उत्कंठा के भगवत दर्शन नहीं होता। इसलिए साधकों में भी भगवान के मिलने की उत्कंठा रहेगी, जिसको भगवान की लगन लग गई जगत के रूप में, जगत के माधुर्य में, जगत के भोगों में, जगत की वासनाओं में अब रह जाएगी कोई चीज, अब नहीं रह सकती। जिसको लगी लगन कृष्ण के चरणों में, अब विश्व ब्रह्मांड उसको उसे नहीं फिरा सकता। यही बात रघुनाथ दास के पिताजी ने रघुनाथ दास के लिए कहा, उनकी मैया से, मैंने अपनी पत्नी से उन्होंने कहा, आप रस्सी से नहीं बंधेगा, निर्जीव रस्सी, लोहे की शिकल से भी इसको नहीं बांध सकते, कृष्ण की लगन लगी है उनके चरणों में, इसलिए आप ये तुम कहती हो रस्सी से बांधने के लिए, तुम कहती है शिकल से बांधने के लिए, अब ये नहीं बंधेगा भाई, जिसको भगवान की दी हुई चीजें नहीं बांध सके, क्या चीज, मोर मोरनी को कौन बांध रहा है, उनका प्रेम, आकाश में चांद है, नीचे में सागर लहरा रहा है, लहरें उठ रही है किस लिए, चांद के कारण, उस प्रेम के कारण, ये कहां कौन देने वाला है इस प्रेम, ये प्रेम है, क्वैल कुहू कुहू करती है, क्वैल भी स्त्री भी बैठी है, उन दोनों में जो ये प्रेम है ये कहां से आया, स्वाति नक्षत्र के लिए प्राण देता है चातक, चातक ही ना, चातक पक्षी, पानी के प्रति इतना प्रेम कहां से आया उसको, कहां से ये प्रेम आया, ये प्रेम ही पर समस्त संसार टिका है, किंतु ये भी प्रेम काम है, और वो प्रेम जो है असल प्रेम के समान, सोने के समान है भैया, जब इसी संसार में इन भौतिक विषयों के प्रेम में संसार समस्त बसा हुआ, बंधा हुआ है परस्पर, ये संसार कैसे बंधा हुआ है, सूरज आकाश में, चंद्र यहां, पृथ्वी यहां, ये पृथ्वी कैसे टिकी हुई है, सूर्य के आकर्षण के, सब ऐसे ही हम लोग परस्पर ये संसार में है ना, आकर्षण खत्म हो जाए तो बस
सब पतन हो गया संसार। इसलिए ये संसार या परमार्थ सब कुछ इस प्रेम के बंधन में बंधा हुआ है। इसी प्रेम की उत्कर्षता जब हमारे संपूर्ण से अधिक होती है, ये श्रीमती राधिका जी में वो प्रेम की उत्कर्षता है, इसलिए वो एकदम पावरी बन जाती है। उसी के लिए करें अब उत्सुकता है, पहले आमर्ष अब इसके बाद में उत्कर्षता। ये दो भाव हैं। पहला भाव था क्या, पहले भाव मिलने की उत्कंठा थी, इसके बाद मिल गए तो मिल गए तो उसने मान कर दिया, बातचीत नहीं किया। जब बातचीत नहीं किया और जब चले गए तो फिर ये अभाव उत्कंठा हुई। ये दो भाव हैं। एक के द्वारा पहले शांत हो गया, जब कृष्ण आ गए तो वो उत्कंठा वो दूर हो गई, माने ये भाव भाव शांत इसको कर, एक भाव शांत होगा एक भाव प्रबल होगा। भजन करने पर ऐसे ही सब भावनाएं आती हैं साधक को, जो ऐसा उच्च कोटि का भाव होगा साधक, और नहीं तो संसार में रमता रहे। कृष्ण ही ऐसे ऐसे प्रेम से जिसमें एक मन में दो तलवारें दस तलवारें रहती हैं, वैसे नहीं। अभी हम लोग अपने मन रूपी मैन में कितने प्रकार की तलवारें रखते हैं, 50, 60, 1 लाख, 2 लाख तलवार अभी घुसी हुई है, उसमें कृष्ण नहीं आएंगे। कृष्ण का प्रेम उस तलवार के मैन में नहीं आएगा, बस एक मन में एक तलवार रहेगी, वो कृष्ण का प्रेम ऐसा ही है। जहां पर कहीं भी थोड़ा सा कुछ दूसरी वासना है, ऐसा दिन रात उसमें एकदम प्रमुख हो जाएगा। उत्सुकता थोड़े देर के बाद में, अब देखो अभी संधि की बात बतलाई है, संधि होने पर दोनों भाव रहे, अब उसके लिए बतलाया स्वजाति और विजाति दोनों भाव में परस्पर, दोनों भाव जब रहते हैं एक साथ में तो उसको भाव संधि का। भक्ति स्वामी सुंदर का ये उदाहरण दिया, जैसे कृष्ण मिले, कृष्ण आ गए ना, उस समय कृष्ण को देख करके प्रबल जो उत्कंठा थी वो उत्कंठा भी है भीतर में, और साथ में वो यहां पर जब आए ना तो उनके प्रति कुछ मान हो करके उनकी उपेक्षा की, अमर्श अमर्ष करके इधर में मुख मोड़ दिया, बातचीत नहीं कहीं, किंतु उत्कंठा कैसी है, ये दोनों भाव वहां पर मौजूद है, उत्कंठा भी वहां पर मिली है और साथ साथ में तिरस्कार भी कर, प्रभु भले ही नाथ अब आप पधारिए ने जहां से आए आपको वहां सुख मिलता है, आपके बिना वो रह नहीं सकते और आप भी उनके बिना नहीं रह सकते, आप कृपा करके उधरिए, किंतु उत्कंठा की प्रबलता इतना है, इसलिए इसको भाव संधि कहेंगे, जब दोनों एक साथ में भाव है और एक भाव को एक भाव मर्दित कर देने पर भाव सबल जाएगा। भाव सबल माने एक की प्रधानता हो गई, एक शांत हो गया, नए नए भाव उठ रहे, एक एक यहां पर एक एक जो शब्द दिया है, एक एक शब्दों में ये सब चीजें हैं, भाव उत्पत्ति हो रही है, दोनों कभी कभी भाव एक साथ रहते हैं और कभी कभी एक भाव एक दूसरे को मर्दित करके, दूसरे को दमन करके और अपना प्राबल्य हो जाता है। जब उन्होंने कहा हे देव और इसके बाद में हे दैत, तो हे देव वाला भाव दब गया और आया दैत, हे प्रिय मेरी प्राण प्रिया हमको छोड़कर के क्यों चले गए, रोने लगती है कलपती है, इसलिए इसको कहते हैं कभी भाव मिलन को संत भाव संधि, और जब उनका तिरस्कार इत्यादि करती हैं, इसका मतलब ये प्रेम नहीं है, ऐसा नहीं, प्रेम की अत्यंत गंभीर अवस्था तब ऐसा होगा। इस वस्तु का दर्शन और उसकी प्राप्ति की स्पृहानि मुक्त जो एक सेकंड का काल भी विलंब नहीं कर सकती, इसको कहते हैं असहिष्णुता, इसी का नाम यहाँ पर अमर्ष बतलाया गया है। भाव संधि में दोनों भावों का प्रबल भाव रहता, दोनों एक साथ में रहेंगे। बहुत ऊंची ऊंची बातों को लिखा है, मैं संक्षेप में आप लोगों को बतला रहा हूं। कभी कभी वो अमर्ष के कारण निंदा करते हैं। कृष्ण की हे चपल, चपल किसको कहते हैं? बच्चे को आदमी कहता कि चपल है, बड़ा तू चंचल है, बड़ा तू ढीठ है, चंचल है, तुम्हारी मति की स्थिरता नहीं, इसलिए चपल कहना माने कृष्ण की निंदा करना। कभी स्तुति करने लगती है, हे नाथ, हे नाथ की स्तुति है ना, हे नाथ, कभी स्तुति करती है, कभी मान कर लेती है, बोलती नहीं, कभी गर्व हो जाता है, कभी ब्याज स्तुति पूर्वक प्रलाप करने लगती है। इस श्लोक में इन सब चीजों का एक साथ में वर्णन हुआ है, इसलिए ऐसे श्लोक का दुर्लभ। चैतन्य महाप्रभु अधिकांश रूप में ये श्लोक और हे देव दैन्य दया करनाथ, हे मथुरा नाथ कदावलोक से हृदय तद आलोक कातरम दैतर धर्म करम, इन दोस्तों ये माधवेन्द्र कुलपाद जी के बड़े प्रिय, हमारे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती के भी ये बड़े, हम लोगों के गुरु वर्ग जितने परंपरा है उन सब, ये व्यास पूजा की पुष्पांजलि में सर्वश्रेष्ठ पुष्प है, यदि हम अपने हृदय में इस पुष्प को बना सके। अब फिर यह बतलाने के बाद में अब हे देव से आरंभ कर रहे हैं कृष्णदास कविराज कृष्ण, दूसरी कॉपी से मिले हुए मिल करके कृष्ण श्रीमती राधिका से मिलना है। उनको कृष्ण को बहुत विलंब से आया हुआ देख करके राधिका के हृदय में मान और अमर्ष दोनों आए। मान मैंने अब इनसे बोलेंगे नहीं, जहां वहीं लौट जाए, और दूसरी साथ साथ में अमर्ष, अमर्ष मैंने असहिष्णुता, इतना विलंब, थोड़ी सी विलंब करके क्यों, ये प्रेम होने पर यह संभव है, ऐसे किसी में नहीं, इसलिए संसार में इसको कहते हैं क्रोध, और उस जगत में उसी की एक छाया है इस जगत में क्रोध। अब इसमें ले आए क्या, तीन प्रकार की जो गोपियां हैं नायिका है, वो धीरा अधीरा और धीरा, इसमें ले आए। जब विलंब से आए तो क्या होगा, तीन ही स्थिति हो, या तो बातचीत न करें, अथवा बातचीत करें तो कैसे बातचीत करें, हाँ आज तो बड़े सुंदर वेशभूषा में आप पधार रहे हैं, तो जिसने आपका इतना सुंदर श्रृंगार किया आप तो वहीं पर पधारिए, यहां पर आपकी क्या कैसे चले आए, रास्ता तो भूल नहीं गए, आंखों से आंसू की बूंदे भी एक हुआ जाए, ये क्या हुआ, धीरा अधीरा, आप चले जाइए तो यहां से मैं आपको देखना नहीं चाहती, एकदम अधीर, और धीरा धीरा मैंने दोनों का मिला हुआ भाव आएगा। ये तीनों भाव श्रीमती राधिका जी में हो सकते हैं, इसलिए तीनों भावों को यहां पर इस श्लोक में एक एक शब्द के द्वारा प्रयोग करके दिखाया। अपने शरीर का होश न रहे और एकदम चिंतन में लग जाए, देख रहा है जो कृष्ण है, राधा जी हैं, गोपियां हैं, वृंदावन में है, राधा कुंड में है, साधक कितना तो कर सकता है, इस तरह से शिवा में निविष्ट जाए, ये संसार का कोई भान ही नहीं रहे भाई। और ये कैसे होगा, जब ऐसे भावों के साथ में हम रहेंगे, ऐसे परिवेश में रहेंगे,
यदि हम जितना ही अपने जीवन के एनर्जी जिस विषय में लगाएंगे, मन कहां जाएगा? आज हमने रास्ते पर मैं जा रहा था, एक देखा एक किशोर लड़का, देखा जी खाया पिया है, किसी ऊंचे वंश का लड़का मालूम पड़ा हमको। मैं टहलते जा रहा था और देखा जैसे उसके कपड़े एकदम फट गए हैं, खाने के लिए भी कुछ नहीं और बैठा हुआ है, कुछ उच्छिप्त सा कुछ है। मुझको दया आई और मैंने पॉकेट से निकाला तो 2 रुपया निकला। हम कहे 2 रुपये में इसका क्या हुआ? फिर उसको अच्छे से देख सुनकर 10 रुपया निकला। 10 रुपये में तो और कुछ नहीं, देखा 100 रुपये का है। इधर आ जा मेरे साथ, दुकान पर ले जाकर के एक कपड़ा दिलवा दिया, अच्छा 50 रुपये में आया। तुम जो कुछ खाना चाहते इस दुकान पर खाओ। कह दिया दुकानदार को, कौन दुकान? ब्रजवासी के दुकान में ले गया। ब्रजवासी इसको जो कुछ खाना चाहे से खिला, क्या खाएगा? तो उसको तो जो कुछ मिले वही खाए, मैंने खिला दिया। खिलाने के बाद में उस कपड़े भी हो गए, खिला भी दिया, किंतु कुछ उच्छिप्त कुछ हो गया। मैंने एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में ले गया और उसको कुछ कहा, जैसे ठीक, किंतु रहेगा कहाँ? उस दिन तो छोड़ करके चला है, किंतु उसके लिए जो हमने 100 रुपया खर्चा किया, ये 100 रुपया हमारी एनर्जी है। अब उसके लिए ये चिंता कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, और चित्त कहाँ गया? उस बच्चे को जो हम दुकान पर ले गए, खिलाया पिलाया और दवा जो दिलाई, उसकी क्या स्थिति है? आएगी कि नहीं आएगी? जरूर अवश्य संभावी आएगी। इसलिए जहां पर हमारा एक एनर्जी का हमारा एक पैसा माने क्या एनर्जी हमारा, हमने परिश्रम करके कमाया है ना, इसलिए जहां हमारी एनर्जी जाएगी वहीं पर हमारी चिंता जाएगी। इसलिए जगत के लोगों का जहां पर कि संसार में उपकार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, हेन करेगा तेन करेगा, ये करेंगे वो करेंगे, दिन रात इसमें व्यस्त है ना, समाज सोशल इत्यादि में। तब बाबा आपके समान और कोई नहीं है, आप भाई जगत में आपसे जरा ये हो जाए, इसने हमको बर्बाद कर दिया। इतना करने के बाद अपमान भी से में भी वह एनर्जी जो लगाया अपमान का कारण बनी, अब चित्त प्यार है। इसलिए ये सब शांति का उपाय नहीं। शांति का उपाय क्या है? सत समय कृष्ण लीला चिंतन में यदि अपने को लगा दिया जाए तब भाई जाकर के ऐसा होगा। इसी को कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। कोई बने संसार में कहीं भी अपने एनर्जी को हम नहीं दें, अब एनर्जी कहां देते हैं? किसी से बातचीत करते हैं तो यही, सोचते हैं तो जब कीर्तन करते हैं तो बस, टहल रहे हैं तो कहां समझ रहे हैं हम गोवर्धन की परिक्रमा दे रहे हैं। नदी देखा उसको देखा जमुना के, कोई वन देखा तो देखा वृंदावन के, सब समय वही स्मृति वही भाव आएगा। तब तो ऐसा हो सकेगा ये भाव होगा, अन्यथा जहां पर एनर्जी लगाएंगे ये स्वाभाविक है जो वैसे चिंता करते करते मरेंगे तो वही सब चिंताएं आएंगी, मरने के समय अनायासी और जन्म लेंगे उसमें। इसलिए ये कह रहे हैं साधुओं के लिए, उच्च साधुओं के लिए ऐसे ही चित्त को इष्ट देव में कृष्ण में लगा। कृष्ण की जो भक्ति है रस वैचित्र वाली है, विचित्र रस। एक कोई साधु आया हमारे घर में, हमने उसको परमान्न दिया और सब्जी दी और कहीं दाल में कम न हो जाए नमक तो नमक भी उसमें एक जगह अलग से रख दिया और दही उसको दे दिया और साथ साथ में बूरा भी रख दिया, ये जितना जरूरत है वो बूरा भी उसमें मिला देगा और खिचड़ी इत्यादि सब प्रकार की चीजें उसमें दे दी। उसने क्या किया, सबको एक में लपेट लिया, सबको मिला करके एक कर दिया और आंख बंद करके क्या कर रहा है, क्या खाया नहीं खाया कुछ पता नहीं, नमक चीनी परमान्न और उसमें नीम का पत्ते का बैगन भी बना था, सब एक साथ में मिला करके सरपट कर गए। और जो किसने जो दिया उसके तरफ भी नहीं देखा, हाथ भी नहीं धोया, और जो दिया उसके प्रति देखा नहीं, बस वहां से उठ करके बस चला। एक प्रकार की। और दूसरा भक्ति ऐसी नहीं है, वो है ज्ञानी विशेष ज्ञान, सबको खिचड़ी बना करके, खिचड़ी भी नहीं गई, बस एक बना करके खा लिया, और जो दिया उसके प्रति कृतज्ञता नहीं, और उसमें भी कुछ मालूम। और भक्ति रस वैचित्र युक्त ऐसी है, उसमें सभी चीजें एक एक चीज को उठाता है और मुख में देकर आह कितना मतलब, चटनी उठाई चटनी बनी है उसमें थोड़ा सा अम्ल किंतु उसमें कुछ मीठा कर, कितना मतलब। अभी बॉम्बे का या कहां का आम आया, जब भी दशहरी आम आता है
बॉम्बे का अल्फा
बहुत पका हुआ, और उसको लिया, वाह वाह भाई कहां से आपने मंगाया, तो जो सुना सुन रहा है ना, जो एकत्रित किया है ये कैसा है, बहुत ही मीठा है, और वो सुनकर के बड़ा अपने भी प्रसन्न होता है, उसको भी प्रसन्न करता है, इस तरह से कृष्ण को भी प्रसन्न करता है और अपने भी प्रसन्न होता है और अपने साथी सबको प्रसन्न करता है, ये भक्ति का वैचित्र है। तो भक्ति रस वैचित्र है, इसको ये दिखला रहे हैं। ये ज्ञान में ये चीजें नहीं है, ज्ञान वाला बस एक साथ में मिलाया और उसमें पानी दे करके हड़प दिया बस, तो इसलिए इसका अलग अलग सब वर्णन कर, कितना बजा
साढ़े सात
बज गया, तो आज यही तक रहे। अभी पहला जो शब्द है इसमें हे देव, आज अभी इसका मुख बंद किया गया, अगले दिन हे देव का अर्थ करके फिर दूसरे का अर्थ करते हैं। ऐसे ही भक्ति यदि करो जीवन सार्थक होगा, रसमय वैचित्रमय ये राश इसका लीला की, और नहीं जिस देवता को देखा उसका पूजा किया, कोई निष्ठा नहीं है एकांतिकता नहीं है, वो भक्ति नहीं है। इसलिए ऐसे भक्ति के प्रति लोभ हो और ऐसी भक्ति का हम पालन करें, और धीरे धीरे हमारा ऐसा लोभ उस भक्ति में हो पाने के लिए उत्पन्न हो, तब तो हम उनका जीवन सार्थक है, और नहीं तो दिन भर दिन और दूसरे चर्चा में चले जा रहे हैं, न कि दूसरे कामों में लगा, कहां उसको समेट करके। गृहस्थ क्या करता है, गृहस्थ को 10 बीघा जमीन है या 100 बीघा जमीन है, खेत पक गया है, तो वो क्या करता है, जेठ का महीना आ गया है, बैसाख के महीने में खेत पक जाते हैं, अब वो देखता है कि यदि जल्दी से नहीं काटेंगे तो क्या होगा, अब ये आने वाली है बरसात, बरसात के पहले ले आकर के इसको दाव करके भूसा को अलग करके भूसे को घर में रखना है और अन्न को भी रखना है, नहीं तो बरसात जहां हुई सब चौपट मामला हो जाए, इसलिए उसको समेट लिया है। वैसे ही हम साधकों को चाहिए अपनी एनर्जी को जगत से समेटे, अभी और बढ़ाना नहीं है, और उसे बढ़ाया वहां बढ़ाया उधर बढ़ाया उधर बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते एनर्जी सर्वत्र विक्षिप्त कर दी, ये नहीं। साधक का मतलब क्या है, अपने चित्त की एकाग्रता को क्रमशः कम करते हुए अब चित्त विक्षिप्त न हो, कृष्ण के चरणों में एकांतिक रूप में आए, इसका नाम है साधक, भजन में एकाग्रता। और ऐसा नहीं चित्त को छोड़ दिया लगाम, घोड़ा चल रहा है उधर चल रहा है, उधर दुरुती मार रहा है, उधर चल रहा है उधर, ये साधक नहीं, न तो ऐसे जन्म आएंगे और फिर चले। इसलिए एकाग्रता के साथ में चित्त को बटोर करके अपनी सारी एनर्जी कृष्ण की
तरफ, कृष्णाय कृष्णभक्ताय पुत्रेति तन्मयतया करो निनेतु तं सर्वभूतहृदयं इमां तवैवास्मि नदीमां भूतयासिन इति त्रिविधाय राधे तं नयनामचरणम्। यम प्रभ्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं ठाकुर द्वारा रचित भजन रहस्य हम लोग ये नहीं जानते थे कि भजन में ये सब बातें हैं, रस की बातें, रहस्य की बातें हम लोग नहीं जानते। हम लोग सोचते जो भजन करना है हरे कृष्ण हो गया भजन। इसी तरह से साधारण साधक ये नहीं समझता है जब भजन में इतना रस है कि संसार सब भूल जाता है, अपनी सारी एक्टिविटीज जो संसार की है वो जहां के तहां खड़ी रह जाती है। किंतु भजन में डुबकी लगाने पर जिन डूबा दिन पाइया गहरे पानी में भजन के रहस्य में जब चलते हैं तो इतना मालूम होता है कि भजन में कितने सुंदर सुंदर रहस्य हैं। बिल्लो मंगल जी का ये श्लोक लेकर के भक्ति मोहन ठाकुर जी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भजन किसको करते हैं। विशेष करके जब संसारिक अनर्थ दूर हो जाते हैं, भक्ति निष्ठा में परिणत हो जाती है श्रद्धा, और निष्ठा और भी अनर्थ से बिल्कुल साफ निर्मल होने पर धीरे धीरे रुचि आसक्ति और जब भाव की अवस्था में पहुंचती भाव भक्त भजन के रहस्य में प्रवेश जब करना तो दिन रात उसमें जब रहस्य में प्रवेश करता है दिन रात आंखें नहीं खोलेगा, दिन रात एक जगह पर बैठ करके समाधिस्थ हो जाए। यही महाप्रभु जी की गंभीरा लीला का रहस्य है। रघुनाथ दास गोस्वामी अकेले राधाकुंड में जो भजन करते थे, रूप गोस्वामी सेवा कुंज में जो भजन करते थे राधा, इन सब का यही रहस्य। निर्विशेषवादियों का चिंतन नेति 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 और इल्लों का इति इति में सौति सेति सेति में दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी भजन के रहस्य में हमको ले जाना चाहते तो वही पर वो कारण जो देखो जब हम अष्टम में जब प्रवेश करते हैं अष्टम स्थिति में भजन रहते हैं और भजन के अष्टम याम में याम मैंने भाग दिन रात का मिला करके आठ भाग कर दिए गए तो भजन को भी कृष्ण मिलने से लेकर के साधारण श्रद्धा से लेकर के इसको आठ भागों में भाग विभक्त कर दिया गया तो पहला ज्ञान पहला वो एकदम निशांत वाला है। अभी निशा भी है अंधकार है अनर्थ से भरा पड़ा है और इसके बाद में फिर निशा का अंत होकर के प्रातःकालीन समय आता है तो हमारे भजन का प्रातःकालीन श्रद्धा और अंधकार हुआ क्या निशान अनर्थों से ग्रस्त जो भाव है उसमें न तो कृष्ण देखते हैं न भजन दिखता है न जीव दिखता है न कुछ दिखता है, एक श्रद्धा की छोटी सी लकीर बीज जैसा उस समय गुरु उसको दे देता है। इस तरह से वो आगे बढ़ता है। हम लोग अभी विचार कर रहे हैं अष्टम याम की, अष्टम भजन के अष्टम भाग की माने अंतिम भाग,
सप्तम सप्तम
नहीं अष्टम
सप्तम
अभी एक दो श्लोक के बाद है। तो ये भावावस्था, भावावस्था में भक्त अपने जिसका वो अनुगमन करता है उनके भावों को देख करके वैसा ही भाव अपने हृदय में लाने की चेष्टा करता है। जो साधक जैसा है ना और जिसका वो अनुगमन करता है वो अपने अनुगमन जो जिसका हम कर उसके भावों को वो हृदय में, और वैसे ही जैसे ऐश्वर्युक्त सख्त भाव यदि किसी को चाहिए तो अर्जुन की चिंता करें। हाँ, अर्जुन ने अपनी सेवा से कृष्ण को ऐसे मुक्त कर दिया है। अर्जुन क्या कर रहे हैं, रथ पर चढ़े हुए हैं, रथ में चढ़ करके विषण हो गए। अर्जुन उनका कृष्ण उनका रथ हाथ रहे, घोड़ों की लगाम उनके हाथ में, उन्होंने धनुष को छोड़ करके बैठ गए, मन खराब हो गया। एक गीता वाचक गीता पढ़ रहा है आज, और वो देखा कि आपने भाव नेत्र से गीता का आरंभ किया, धर्म क्षेत्र गुरु क्षेत्र का पांडवाश्चर्य, पढ़ा और आंखें बंद हो गई, आंख से झटझट झटझट कर आंसू गिरने लग गए। वो खूब दयालु भगवान जो योगियों के दर्शन में नहीं आते, आज रथ में बैठ गए, साक्षी कर रहे हैं। केवल घोड़ों की लगाम की साक्षी नहीं, मन के लगाम को पकड़ करके अर्जुन को, और उस विषण अवस्था में उपाचर कहने लगे। देखा जी सामने घोड़े चार खड़े हो गए, बड़े सुंदर सुंदर और दिव्य रथ, और उसमें दिव्य कवच और ये धनुष बाण को लेकर के अर्जुन खड़े। हमारा रथ ले चलो बीच में, ये कौन देख रहा है, जो पढ़ रहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये कौन था, ब्राह्मण। महाप्रभु जी जा रहे हैं दक्षिण देश में भ्रमण कर, और वो ब्राह्मण रो रहा है। तो वो धर्म क्षेत्र होना चाहिए ना, तो वो पढ़ा धर्म क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम इत्यादि ऐसे कर रहा है, धर्म क्षेत्र नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, धर्म क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम समवेता जुजुत्सवा है, जुजुत्सव उसको पढ़ने नहीं आता, अनुस्वार विसर्ग नहीं कभी पढ़ा, वो जब देख रहा है वो जैसा हो रहा है कर रहा है, और आंखें बंद हो गई और वो देखने लगा जरक से खड़ा है उस मिशन में अर्जुन प्राप्त भगवान, किंतु आज उसके हाथ से गांडी और कृष्ण वहां पर जाकर रहे हैं। उपपद्य क्षुद्रम हृदम दौर्बल्यम तत्व उठिस्थ उठिस्थ परम, अपने मन की दुर्बलता को छोड़ करके अपने हथियार को लेकर यहां पर बैठ जाओ। क्लैबम स्मगम बड़ा पंडित बन रहा है, गताशु न गताशु नाम सो चंद पंडित, आज तुम पंडित होकर के जो चला गया उसके लिए शो करता, जो चले जाने वाले उसके लिए शो कर रहा, उठो उठो। अब ये सब वाणियां तो उसके भाषा में भाव मिले करके, और देख रहा है कि कृष्ण उसको ओहो कृष्ण का कितना सुंदर रूप, अर्जुन कैसे विषण हो रहे हैं, कैसे सुंदर सुंदर हो रहे हैं, कैसे सुंदर सुंदर उपदेश, वो उपदेश याद नहीं देख रहा, वो क्या देख रहा है, कृष्ण का रूप देख रहा है, अर्जुन को देख रहा है। और पार्टी में पंडित लोग बैठे हैं, अनुस्वार विसार के पंडित हमारे जैसे पंडित कम खम टम बैठे हुए, उन्होंने देखा रे ये बेवकूफ कभी संस्कृत क्या तक पढ़ा नहीं, स्कूल में कभी गया नहीं, और ऐसे उच्चारण आता नहीं, और आंख से आंसू देखा तो इस ढोंगी को,
महाप्रभु जी वहां पर बैठे हुए थे, देख रहे थे, तन्मय होकर के बैठे। जब उसका पढ़ना शेष हो गया, आंखों में आंसुओं की लकीरें अभी पड़ी हुई है, और वो पोथी को दबा करके अब वो जाने की तैयारी। महाप्रभु सट पहुंच गए और उसके समीप जाकर के बैठ गए। एक जिज्ञासु, साधारण जिज्ञासु की तरह हाथ जोड़कर, पंडित जी एक बात हमको बतलाएंगे सच में, आप ये पढ़ रहे थे गीता तो अकरूप आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहा था? तो उन्होंने कहा चुपचाप बैठ जाओ। आंसू किस लिए आंसू आ रहे हैं? उन्होंने कहा मैं संस्कृत तो जानता नहीं, जैसे तैसे आ जाता है, मैं उसे पढ़ लेता हूं, किंतु मैं ज्यों ही आरंभ करता हूं देखता हूं कि कृष्ण सचमुच रथ लेकर के वहां पर उपस्थित हो और कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, और कृष्ण का रूप वह देखकर अब अर्जुन का वह भाव देखकर और दिव्य रथ देख करके, विशेष करके कृष्ण का स्वरूप देख, मैं एकदम तन्मय हो जाता हूं, अब बरबस आंखों से आंसू देता हूं। बस महाप्रभु जी एकदम निपट गए, बोले तुम्हारा पढ़ना ही सार्थक है। उन पंडितों का अनुसार धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र माम का पांडवाश्चैव कुमकुरुगत संजय, ये शुद्ध पढ़ना किसी काम का नहीं यदि उसमें भाव नहीं है। उसी प्रकार से जो हरिनाम करते हैं, 3 लाख हरिनाम 4 लाख हरिनाम करने वालों को भी हमने सुना, किंतु भाव नहीं है तो वो भजन नहीं है। ये भजन के सब रहस्य हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी का इन भजन के रहस्यों के साथ ही भजन नहीं किया जाए तो ऊपरी झापरी विचारों को लेकर के चला जाए। ये जिनको भजन के ये भाव नहीं, वो क्या प्रचार करेगा, क्या चीज देगा? कृष्ण के अंदर में वो भाव थे इसलिए अर्जुन को वो उपदेश दिया। जिस गुरु के हृदय में ये सब भाव ही नहीं है, जो शिष्य इसको लेना ही नहीं चाहता है ऐसे भाव को, उन लोगों के लिए भजन का भी रहस्य नहीं है। हाँ, वैष्णव के संग में कुछ दिनों के बाद में ये सब भाव फास तब भजन के रहस्य में प्रवेश करने पर उसको समझे। उस समय कहते हैं भक्ति विनोद, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जो समस्त अनर्थों को छोड़कर के ही भजन करना ये नहीं है, जब समस्त अनर्थ छूट जाएंगे, चित्त निर्मल हो जाएगा, कोई भी दोष त्रुटि नहीं रहेगी और सब कुछ हम जान लेंगे तब भजन करेंगे, यह गलत है। जो जैसा जिस अवस्था में जहां पर भी है, चाहे वो हजार अजामिल की तरफ में वो दुराचारों से भरा पड़ा है, अनर्थ है, उसमें संसार के सभी जो कुछ अनाचार व्यभिचार सब कुछ है, किंतु वहीं से यदि श्रद्धा उसके वहीं से भजन आरंभ है, जो जहां स्थाने स्थिता तनुमानी होती, जो जहां पर जिस स्थिति में वहीं से भगवान का भजन करता है। तुम इसके योग्य नहीं हो, तुम बहुत दुराचारी है, तुम दुराचार छोड़ दो इसके बाद में भजन करो, ऐसा नहीं गुरु ऐसा नहीं करता। गुरु क्या करता है, अच्छा आरंभ करो और इसको साथ साथ में छोड़ो, जब छूटता नहीं तभी तुम करो, तो मन में एकाग्र नहीं होता है, विषय में फंसा हूं। ठीक है कोई बात नहीं है, तुम करो तो गुरु जी मैं पूरा नहीं कर, आपने कहा 1 लाख परिणाम करने का तो मैं तो कर नहीं सकता, मेरे लिए संभव नहीं। ठीक है 1 लाख नहीं कर सकता है, 75,000 कर सकता है, नहीं करा, कितना करेगा, 32 बार करेगा, 32 माने 50,000, ये भी मेरे लिए संभव, कितना होगा तुमसे? तो आप कहेंगे तो मैं 16 बार के लिए चेष्टा करूं। अच्छा ये ऐसा ही करो, न से तो अच्छा है, मामा नहीं होने से काना मामा भी अच्छा है ना, मामा ही नहीं और किसी का मामा है किंतु काना है तो वो भी अच्छा है, मामा है काना है, तो वैसे ही भजन नहीं पूरा कर पाता। अच्छा तो यही सार, किंतु भक्ति देवी एक ऐसी की जो ऐसे दुराचारी महान पापी व्यक्ति को भी अजामी और वाल्मीकि जैसे लोगों को भी उदार है। वहीं से आरंभ किया, राम राम करो, नहीं निकल रहा है, हमको आता ही नहीं है गुरु जी, नहीं आता। अच्छा मारपीट किया कहीं किया है, कहां किया है, पाओ मारपीट। अच्छा तो आदमी ये मर करके जा रहा है ना, ये जो लास्ट जा रही है क्या है, तो मरा हुआ है, तो मरा तो आ जाता है, तो ठीक है मरा मरा करो, तो ठीक है गुरु जी हमारे लिए अनुकूल है, मरा मरा तो मैं कर सकता, ठीक है मरा मरा ही करो, मरा मरा आरम कर, मरा मराम राम राम। अरे ये तो राम राम होने लगा, पहले तो आता ही नहीं था, किन्तु अब आने लग गए। इसलिए जो जहां स्थित है, स्थानीय स्थिति तनु मन आरंभ करेगा, तब ये सप्तम स्थिति में जहां हम लोग भी पाठ कर रहे हैं, तो धीरे 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 ऐसा ही देखा जाए। अजामिल चरित्र को देखो, चित्र के तो महाराज के चरित्र को देखो, और भी जितना है सबका चरित्र भी ये देखो। पहले ये नहीं मालूम पड़ता कि भजन में इतना रहस्य है, रस ये नहीं मालूम पड़ता, किंतु धीरे धीरे, किंतु इसकी जड़ में कौन है, ये श्लोक कहने के पहले ये श्लोक है शायद 40वां है, तो पहले श्लोक में उन्होंने प्रणाम किया, पहले अपने गुरु जी को प्रणाम कर रहे, चिंता मनीर जयति सोम गिरी गुरु में शिक्षा गुरु भगवान ऋषि की पुच्छ मौली जत्पाद कल जत्पाद कल्प करु पल्लव से खरेशु लीला स्वयं वर रसम लभते जयश्री। पहले उन चीजों को भजन में रहस्य प्रवेश करने के लिए ही गुरु की जरूरत है, नहीं तो ऐसा कौन नहीं है जो मराम राम 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 कर ले। उल्टा नाम करने से वाल्मीकि जी को ये हो गया, कुछ दिनों में ही वो सर्वांतर्यामी सर्वदर्शी वो हो गए, जगत को पवित्र करने वाले बन गए। और हम लोग राम राम करते हैं और कितना करते हैं, कृष्ण कृष्ण करते हैं, हम लोगों को क्यों नहीं कुछ हो रहा है, कारण क्या है, उनका गुरु कौन था, इसलिए। और साधारण लोग जो जिनके गुरु कर्मी ज्ञानी हैं, जिनको भगवान में विश्वास नहीं है, अपनी प्रतिष्ठा के लिए उनको करते हैं, उनके लिए वो लात बात भी करते रहे, वो फल रहे, इसलिए सब कुछ निर्भर करता है इसके ऊपर। इसलिए हमारे संप्रदाय में भक्ति विनोद ठाकुर जी का बहुत महत्व, वे यथार्थ उनके बचनों को जो चलने वाले हैं वो लोग। इसलिए यहाँ पर कृष्ण करना का श्लोक ले हैं, किसका, जिन्होंने पहली वंदना की, चिंतामणि हमारी गुरुदेव जी है, कैसे हैं, चिंतामणि है, चिंतामणि उसको कहते हैं जो कुछ चिंता की जाए और वो प्रत्यक्ष रूप में मिल जाए, वह जो कुछ दे सके उसको कहते हैं चिंता। किंतु चिंतामणि भी बहुत प्रकार की, एक तो चिंतामणि है ऐसी जैसे कि कोई एक राजा था, जंगल में गया शिकार खेलने, रात हो गई, रात हो गई तो शिकार खेलते 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 थक गया, भूख भी लगी, प्यास भी लगी, थक भी गया, तो जंगल में देखा जैसे अब तो भयंकर अंधकार होने लगा और सिंह भालू भी गर्जन करने लगे, अभी हमको खा जा न सके, इसलिए वो कहीं अपना आश्रय चाहता, घोड़ा लिया, चलते चलते एक कहीं देखा जैसे घोर अंधकार हो गया, बस एक पेड़ के नीचे गया, सोचा जो हो जब यहाँ पर मुझे कुछ भोजन मिल जाता और सुंदर पानी मिल जाता तो पानी पी करके खा करके, इतने में देखा पानी आ गया और भोजन भी मिल गया। थोड़ी देर के बाद एक पलंग होता ना, बड़े आराम से सो जाए, इतने देखा एक पलंग आ गया, खूब सजा सजा बस उस पर सो, थोड़ी देर के बाद नींद खुली, तो बात अरे बात कहीं खाने जाए, इतने में बाघ लपका उसको खा गया। इसलिए अच्छा या बुरा जो कुछ भी चिंतामणि से कहते हैं कि वहां पर कोई चिंतामणि थी या कोई कल्प, यहाँ पर कल्पतरु का उल्लेख है, जतपाद कल्पतरु पल्लव कृष्ण के चरण कमल, या हमारे गुरु जी जो है जो चिंतामणि स्वरूप है उनके चरण कमल कैसे हैं? कल्पतरु के समान है, जो कुछ हम इच्छा करें वही सुख ऐसे है। और एक कल्पतरु चिंतामणि के ऐसे गुरु जी हैं